हवेली में रात गहराने लगी थी। आंगन में टंगी पीली लाइट्स दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थीं और बाहर पेड़ों से आती हवा में हल्की सी सरसराहट थी। गेट खुलने की आवाज आई और शामली अंदर आई। ऑफिस की थकान उसके चेहरे पर साफ थी, लेकिन कदम सीधे अपने कमरे की तरफ नहीं मुड़े। वो बिना रुके सीधे रसोई घर की तरफ बढ़ गई। रसोई में उस वक्त काम चल रहा था। नौकर नौकरानियां रात के खाने की तैयारी में लगे थे। जैसे ही शामली अंदर आई, सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ उठ गईं। कुछ पल के लिए काम जैसे रुक गया। ठाकुराइन, मधु हैरानी से बोली। वो जल्दी से हाथ पहुंचते हुए उसके पास आई। आप यहाँ? अभी तो आप ऑफिस से आई हैं, उसने चिंता से कहा। कुछ चाहिए था तो आवाज लगा देती, मैं कर देती। शामली ने हल्की सी मुस्कान दी। थकान के बावजूद उसमें अपनापन था। नहीं मधु, उसने धीरे से कहा, कुछ चाहिए नहीं। फिर चारों तरफ देखा। चलते काम, सब्जियों की खुशबू, चूल्हे की गर्मी। आज, वो बोली, मैं भी खाना बनाने में मदद करूंगी। एक पल के लिए सभी चौंक गए। नहीं नहीं ठाकुराइन, मधु ने तुरंत कहा, आप रहने दीजिए, आपका काम नहीं है ये। लेकिन क्यों? शामली ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं कर नहीं सकती क्या? पहले भी तो करती थी। मधु हड़बड़ा गई। ऐसी बात नहीं है, बस। बस क्या? शामली ने आस्तीन मोड़ते हुए कहा। मैं बोर हो रही थी और थोड़ा मदद भी कर दूंगी। उसके लहजे में जिद नहीं, सादगी थी। मधु ने बाकी नौकरों की तरफ देखा, फिर हार मानते हुए सिर हिला दिया। ठीक है, वो बोली, लेकिन? और बस। अगले ही पल शामली काम में लग गई। सब्जी काटना, मसाले मिलाना, रोटी बेलने की कोशिश। शुरू में थोड़ी अनाड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे हाथ जमने लगे। नौकर भी अब थोड़ा सहज हो गए। कभी कोई मदद करता, कभी कोई हंसकर सिखा देता। रसोई का माहौल पहली बार इतना हल्का लग रहा था। लेकिन रसोई के बाहर अंधेरे में खड़ी एक और नज़र सब देख रही थी, अक्षरा। उसकी आंखें सिकड़ी हुई थीं, होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान। अच्छा, उसने मन ही मन कहा, महारानी अब खाना भी बनाएंगी? उसकी नजरें शामली पर टिकी थीं, हर हरकत को देखते हुए। सब जानती हूँ मैं, उसने सोचा। विशु को खुश करने के लिए ये सब नाटक है। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन उतर आया। मैं ये होने नहीं दूंगी। एक आखिरी नज़र रसोई पर डालकर वो धीरे से मुड़ी और अंधेरे गलियारे में गुम हो गई। रसोई के अंदर शामली ने आखिरकार खाना तैयार कर लिया था। मधु ने चक्कर कहा, बहुत अच्छा बना है ठाकुराइन। बाकी नौकरों ने भी हामी भरी। शामली हल्का सा मुस्कुराई। थकान के बीच एक सुकून था। ठीक है, उसने कहा, अब आप लोग बाकी संभाल लीजिए। वो हाथ धोकर बाहर निकल गई, अपने कमरे की तरफ। धीरे धीरे नौकर भी अपने अपने काम में लग गए। कोई बाहर चला गया, कोई दूसरे हिस्से में। कुछ ही देर में रसोई लगभग खाली हो गई। और तभी दरवाजे के पास एक परछाई फिर से उभरी, अक्षरा। वो चुपचाप अंदर आई, नजरें इधर उधर घुमाई। कोई नहीं था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें मिठास नहीं थी। वो सीधे उस कढ़ाई के पास गई जहां तैयार खाना रखा था। धीरे से उसने अपनी चुन्नी के कोने से कुछ निकाला, एक छोटा सा पाउच। उसने पल भर रुकी, फिर चारों तरफ देखा, सन्नाटा। और अगले ही पल उसने वो पाउडर खाने में मिला दिया। चम्मच से हल्का सा घुमाया, सब कुछ वैसे ही दिख रहा था, लेकिन अब स्वाद बदल चुका था। अक्षरा ने एक गहरी सांस ली और होंठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आई। अब, उसने मन ही मन कहा, देखते हैं महारानी का जादू कितना चलता है। वो मुड़ी और उतनी ही खामोशी से बाहर चली गई। रसोई फिर से खाली थी, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। सीन वहीं ठहर गया जहां एक मासूम कोशिश साजिश में बदल चुकी थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी फैली हुई थी। पर्दे आधे खुले थे और बाहर से आती ठंडी हवा माहौल को और शांत बना रही थी। शामली अलमारी के पास खड़ी थी, धीरे धीरे अपने गहने उतार रही थी। चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन आंखों में कहीं एक सुकून थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। विश्वनाथ बाहर आया, ताजा, बाल हल्के गीले और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। उसकी नजर जैसे ही शामली पर पड़ी, वो कुछ सेकंड वहीं रुक गया, बस देखता रहा। शामली ने आईने में उसकी परछाई देख ली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने बस हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे उसकी नजरों का असर महसूस हो रहा हो। विश्वनाथ धीरे धीरे उसके पास आया। कदमों की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी और अगले ही पल उसने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। शामली हल्का सा चौंकी, लेकिन खुद को छुड़ाया नहीं। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। विश्वनाथ ने अपना चेहरा उसके कंधे के पास झुकाया और धीमे से कहा, आज बहुत चुप हो तुम। उसकी आवाज में नरमी थी। शामली ने हल्की सी मुस्कान दी, थक गई थी। विश्वनाथ ने उसकी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली, या कुछ सोच रही हो? शामली ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी बाहों में थोड़ी ढीली पड़ गई। कुछ पल दोनों वैसे ही खामोश खड़े रहे। फिर विश्वनाथ ने धीरे से उसे अपनी तरफ मोड़ा, अब दोनों आमने सामने थे। उसकी नजरें सीधी श्यामली की आंखों में थीं, गहरी और पढ़ने वाली। आज उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुछ बनाया है? श्यामली ने भौहें हल्की सी चढ़ाई। क्या? रसोई में, उसने कहा। सबने बताया? श्यामली की आंखों में हल्की सी चमक आई। तो? विश्वनाथ थोड़ा झुका उसके और करीब। तो? उसने धीमे से कहा, मुझे अभी चखना है। श्यामली हल्का सा शर्मा गई। खाना? विश्वनाथ मुस्कुराया। और क्या? उसकी आवाज में वही हल्की शरारत थी। श्यामली ने नजरें झुका ली, लेकिन इस बार मुस्कान साफ थी। विश्वनाथ ने उसकी थोड़ी हल्के से उठाई ताकि वो उसकी तरफ देखे। आज? उसने धीमे स्वर में कहा, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। श्यामली के गालों पर फिर से रंग आ गया। आप भी? उसने धीरे से जवाब दिया। आज थोड़ा कम गुस्से वाले लग रहे हैं। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। कमरे का माहौल अब बदल चुका था। थकान कहीं पीछे छूट गई थी और उसकी जगह एक सुकून भरी नजदीकी ने ले ली थी। विश्वनाथ ने फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लिया, इस बार और करीब। श्यामली ने भी बिना हिचक अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। बाहर हवा चल रही थी और अंदर दोनों के बीच की खामोशी कहानी कह रही थी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी और एहसास ही सब कुछ थे।